ओम शांति। तो आज 23 दिसंबर 2017 है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है नए भारत के विषय में, लेट न्यू इंडिया अराइज आउट ऑफ द पेजेंट्स कॉटेज, ग्रास्पिंग द प्लाउ आउट ऑफ द हट्स ऑफ द फिशरमैन, द कॉबलर एंड द स्वीपर, लेट हर स्प्रिंग फ्रॉम द ग्रॉसर शॉप, फ्रॉम बिसाइड्स द ओवन ऑफ द फ्रिटर सेलर, let her emanate from the factory, from the mart, from markets, let her emerge from groves and forests, from hills and mountains, skeletons of the past there before you are your successors, that India that is to be, throw those treasure chest of yours and those jeweled rings amongst them as soon as you can, and you vanish into the air and be seen no more. Only keep your ears open. No sooner will you disappear than you will hear the inaugural shouts of renascent India, ringing with the voice of million thunders and reverberating throughout the universe. Vahe Guru ki Fateh, victory to the Guru. Aaj Krishi Divas hai, National Farmers Day. Aur yahan jo humne padha, inhone kaha ki naya Bharat jo hai, एक किसान के झोपड़े से निकलेगा, ग्रास्पिंग द प्लाउ, जो कि अपना हल पकड़ा हुआ है, आउट ऑफ द हट्स ऑफ द फिशरमैन, द कॉबलर एंड द स्वीपर्स। तो आज हमारे बीच में विशेष ग्लोबल हॉस्पिटल से कल्पना बेन आए हैं और नेशनल फार्मर्स डे के विषय में हमको थोड़ी सी जानकारी देंगे और इसका क्या महत्व है उसके बारे में भी बताएंगे। आज जो भारत की जो नींव है वो एक किसान है और इस किसान की जो अवस्था है कई जगह पर काफी दयनीय है। तो इस ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और इसलिए कल्पना बहन हम सबको इसके विषय में और विस्तार से बताएंगे। कल्पना बहन,
ओम शांति। आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल हॉर्टिकल्चर, आध्यात्मिक बागवानी। और ये टॉपिक जैसे सर ने बताया आज के दिन से रिलेटेड है क्योंकि आज फार्मर्स डे है। 23 दिसंबर हमारे भारत के 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, उनका जन्म दिवस है। और चौधरी चरण सिंह ने अपने कार्यकाल में, जो उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल था, उसमें किसानों के लिए बहुत कुछ किया था क्योंकि वो खुद एक किसान परिवार से थे और उन्होंने देखा था कि हमारे भारत में किसान बहुत मेहनत करता है, उसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन किसानों को उतना दर्जा नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को लेकर किसानों की प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि किसानों के खुद के क्या हक है उनको खुद ही उस बारे में अवेयरनेस नहीं थी, तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसे काम किए उनके कार्यकाल में। इसीलिए उनके जन्मदिन को 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस, कृषि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर देखा जाए तो एक किसान का जो प्रोफेशन है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको दुनिया के हर व्यक्ति को जरूरत होती है। एक डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब ऐसे प्रोफेशन है, किसी को ज्यादा जरूरत पड़ती है, किसी को कम पड़ती है और कई लोगों को नहीं भी पड़ती है। लेकिन किसान की जरूरत हम लोगों को हर रोज पड़ती है। दिन में 3 वक्त जब हम खाना खाते हैं तो उसके पीछे किसी ना किसी किसान का हाथ होता है। 23 दिसंबर को भारत में कई जगह पर, और मेनली उन स्टेट्स में जहां पर एग्रीकल्चर को एक मेन स्थान दिया गया है, जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, उन जगहों पर इसे बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत मनाया जाता है। अलग अलग तरह के डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, किसानों को पुरस्कार दिए जाते हैं, उन्होंने पूरा साल जो काम किया उनको सम्मानित किया जाता है और कई तरह से उनको एजुकेट किया जाता है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। तो इस तरह से हरियाणा के कई स्टेट्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स आज के दिन पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एक किसान की अगर हम लाइफ को देखें तो एक बहुत हार्ड लाइफ होती है। पूरा दिन वो खेतों में काम करता है, भले धूप हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, लेकिन अपनी फसल को वो एक बच्चे की तरह संभालता है। और एक किसान जो है हमारी लाइफ में, उसका रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका लाइफ बहुत स्ट्रगल वाला, बहुत संघर्ष वाला होता है। और हम लोग, मैं खुद एक, माना हरियाणा से मैं बिलोंग करती हूँ और मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि कैसे इन किसानों की लाइफ होती है। उनकी अपनी पूरी जीवन तो हर चीज से, माना आर्थिक मंदी में और इस तरह से गरीबी में ही निकल जाती है, लेकिन वो पूरे देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। और ये स्ट्रगल और ये संघर्ष अगर देखा जाए तो हर किसी की लाइफ के लिए जरूरी भी बहुत होता है। जैसे किसान के जीवन में संघर्ष होता है, अगर हमारे जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो जीवन हमारा खोखला रह जाता है, जीवन में किसी भी तरह की प्रोग्रेस नहीं हो पाती। एक छोटी सी स्टोरी है इससे रिलेटेड कि एक बार एक किसान था जो भगवान से नाराज हो गया। उसने भगवान, क्योंकि वो जब भी फसल उगाता था, कभी बारिश आ जाती थी, कभी आंधी तूफान आ जाता था, और उसको जितना फसल से उतना आउटकम मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था, तो वो बहुत नाराज हो गया। और उसने भगवान को कहा कि भगवान आप बहुत नॉलेजफुल होंगे, आपको बहुत ज्ञान होगा, लेकिन आपको लगता है कृषि का ज्ञान नहीं है, कौन से फसल के लिए कौन सा मौसम रखना चाहिए आपको कुछ नहीं पता, मैं फसल कोई उगाता हूँ आप मौसम कोई कर देते हो। तो भगवान ने फिर उसे कहा कि तुम बताओ फिर क्या करना है। तो उसने कहा कि आप मुझे एक साल तक जैसा मौसम मैं चाहूँ आप ऐसा मौसम मुझे दीजिए, तो देखिएगा मैं आपको कितना कितना कुछ करके देता हूँ, इतनी फसल उगा के देता हूँ। तो भगवान ने बोला ओके ठीक है, एक साल तक आप जैसा चाहेंगे वैसा मौसम रहेगा। तो फिर किसान ने अपना काम करना शुरू किया, उसको जब धूप चाहिए होती थी वो धूप करता था, जब बारिश चाहिए होती थी बारिश, और आंधी तूफान ये सब तो उसने आने ही नहीं दिया। तो 5-6 महीने में ही उसके खेत बहुत बड़े बड़े लहरा गए, बहुत गेहूं की बड़ी बड़ी बलिया उसमें लग गई। तो किसान बहुत खुश हो गया कि देखा अभी भगवान को पता चलेगा कि मैंने कितने अच्छे से अपनी खेती को बढ़ाया है अगर मौसम अच्छे से रहा। तो फिर जिस दिन उसको कटाई करने का दिन था, वो कटाई करने के लिए गया तो उसने देखा कि गेहूं की बलिया तो लगी है लेकिन उनके अंदर दाना बना ही नहीं है। तो वो बहुत उदास हो गया, उसने सोचा मैंने तो इतनी मेहनत की, मौसम भी इतना अच्छा रहा, फिर क्यों अंदर दाना नहीं बना। तो उसने फिर भगवान से पूछा भगवान ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान ने कहा कि देखो एक पौधा जब आंधी तूफान में खड़े रहने के लिए संघर्ष करता है तो वो संघर्ष उसके अंदर जीवन उत्पन्न करता है जिससे उसके अंदर बीज बनता है। तुमने पौधों को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करने दिया जिस कारण पौधों के अंदर वो जीव शक्ति उत्पन्न ही नहीं हुई और उसके अंदर बीज नहीं बना। जीवन में हर स्टेप पर संघर्ष होना जरूरी है। जैसे हमारी लाइफ में भी जब संघर्ष आता है हमें लगता है क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए, लेकिन बाबा भी हमें बोलते हैं कि ये माया के टेस्ट भी बहुत जरूरी है। अगर टेस्ट नहीं आएंगे तो हमें लगेगा कि हम बहुत ही अच्छे योगी है। जैसे गेहूं की बलिया बहुत लहरा रही थी तो देख के लग रहा था कि बहुत अच्छे खेत है, लेकिन पता चला कि अंदर तो दाना ही नहीं था। तो ऐसा ही हमारा जीवन हो जाएगा, अगर कोई संघर्ष नहीं आएगा तो हमें लगेगा कि हम लोग बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से हमारी वो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। इसी तरह ये जो आज का टॉपिक है आध्यात्मिक बागवानी, ये टॉपिक जब मैंने सुना था तो किसी को भी ये टॉपिक सुनते ही पहली जो चीज माइंड में आती है वो यही आती है जो बाबा मुरली में कहते हैं कि ये जो हमारा मधुबन है या पूरा ब्राह्मण परिवार है वो फूलों का बगीचा है और बाबा इसका बागवान है। तो बाबा बागवान किस तरह से ये फूलों के बगीचे को, बगीचे की संभाल करता है, बगीचे को देखता है, उसको पालना देता है सारी, तो उसको हम आध्यात्मिक बागवानी कहते हैं। ऐसे दुनिया में जो बागवानी होती है ये कृषि के भी दो एस्पेक्ट्स है, एक एग्रीकल्चर होता है एक हॉर्टिकल्चर होता है। एग्रीकल्चर माना जो हम खेतों में फसल उगाते हैं, खेती करते हैं, और हॉर्टिकल्चर माना जो हम फूल सब्जियां ये सब उगाते हैं। तो आध्यात्मिक बागवानी को मैं सोच रही थी कि जो दुनिया में जो बागवानी होती है अगर हम उसके साथ रिलेट करें तो किस तरह से बागवानी होती है। तो बागवानी का, कहीं पर भी बागवानी करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है धरनी को तैयार करना। कहाँ पे हमें बागवानी करनी है, सबसे पहले वो धरनी को तैयार करना पड़ता है। और धरनी को तैयार करने के लिए पहले जो मिट्टी है वहां की, उस मिट्टी को खुदाई करके किसी भी तरह से उसको नरम किया जाता है ताकि उसमें बीज डाला जा सके। मिट्टी को नरम किया जाता है, उस पे पानी के छींटे डाले जाते हैं और उसमें खाद मिलाई जाती है। ये तीन स्टेप होते हैं जब हम दुनिया में बागवानी करते हैं। ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक बागवानी, हम सभी को अनुभव होगा जब हम ब्राह्मण परिवार में आए या पहली बार सेंटर पर गए, हमारी धरनी को कैसे तैयार किया गया। सबसे पहले तो हमारी बुद्धि रूपी मिट्टी को नरम किया गया और वो नरम किया गया पालना के द्वारा, जो हमें अपने बड़े भाई बहनों से निस्वार्थ प्यार मिला, पालना मिली, सबसे पहले तो हमारी बुद्धि को उसने नरम किया, फिर स्नेह जल के छींटे डाले गए, प्यार दिया गया। शुरू में हम लोगों ने तो ये देखा कि ज्ञान हमें सुनाया ही नहीं गया, हमें पहले पालना ही दी गई, प्यार इतना दिया गया कि उसी से फिर हम लोग ज्ञान सुनने के लायक बने। और तीसरी चीज होती है खाद दी जाती है, तो यहाँ भी हमें ब्राह्मण परिवार से जो शुभ भावना की खाद मिलती है उससे हमारी धरनी तैयार होती है। पहले हमारी बुद्धि नरम हुई पालना द्वारा, ज्ञान जल के छींटे मिले और शुभ भावना की खाद मिली, तो हम लोग रेडी हुए कि हम लोग ज्ञान सुन सकेंगे। सबसे पहला स्टेप ये हुआ हमारी स्पिरिचुअल बागवानी में। फिर जब धरनी तैयार हो जाती है तो कुछ दिन उस धरनी को ऐसे छोड़ा जाता है, उसके बाद उसमें बीज डाला जाता है। तो बीज डालने के लिए क्या करते हैं, जब एक बागवान बीज डालने के लिए जाता है, कभी भी बीजों को ऐसे ऊपर ऊपर डाल के नहीं आ जाता है, वो अच्छे से मिट्टी को हिलाता है और मिट्टी के अंदर बीज को डालता है। और उसने बीज तो डाल दिया, लेकिन बीज डालने के बाद जरूरी होता है उसको पानी देना और उसको प्रॉपर धूप मिलते रहना। दोनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो भी बीज अंकुरित नहीं हो पाता। तो ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक बागवानी में हमारी मिट्टी तो नरम हो गई और ज्ञान का जब बीज डाला जाता है, अगर ज्ञान के बीज को भी हमने अंदर से अच्छी तरह से मिलाया नहीं, माना ज्ञान को अच्छी तरह से समझा नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर छोड़ दिया ऐसे, तो वो बीज अंकुरित नहीं होता है। और बीज तो अंदर गया धरती में, पर उस बीज को या तो स्नेह का पानी नहीं मिला, माना ज्ञान हम लोग को हर रोज सुनाया जा रहा है पर कोई पालना नहीं दे रहा, प्यार नहीं दे रहा, बीज अंकुरित नहीं होता। दूसरा योग की धूप, ज्ञान के साथ साथ अगर हमारा योग में ध्यान नहीं है तो भी वो ज्ञान रूपी बीज अंकुरित नहीं होता। तो ये तीन स्टेप इधर आध्यात्मिक बागवानी में हम देखते हैं कि किस तरह से बीज डलने के बाद हर रोज प्यार के स्नेह के जल द्वारा और योग की धूप द्वारा उस बीज को अंकुरित किया जाता है। फिर बीज तो अंकुरित होने लगता है, बीज जब अंकुरित होता है सबसे पहले एक छोटा सा पौधा निकल के आता है, और वो जो छोटा पौधा निकल के आता है वो बहुत नरम होता है, इसलिए उसको मिट्टी में ही कुछ कीड़े होते हैं उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो जब उस पौधे को वो कीड़े खाना शुरू करते हैं तो वे बागवान देखता है तो क्या करते हैं, कुछ कीटनाशक डालता है ताकि मिट्टी के कीड़े मर जाए। ऐसे ही हम लोग ज्ञान में जब हमारा बीज अंकुरित हो गया, छोटा सा पौधा निकलने लगा, तो क्या उसमें क्या था, मिट्टी के अंदर ही कीड़े होते हैं। यहाँ पर भी हमारी बुद्धि में ही कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारी बुद्धि में ही उग रहे उस ज्ञान के पौधे को खाना शुरू करती है। उसमें कुछ होती है संशय की बातें, एक तो पहले संशय, क्योंकि पूरी तरह से निश्चय नहीं हो पाता कि भगवान का ही ज्ञान है, अपने पुराने संस्कारों की बातें होती हैं। तीसरा हमारे व्यर्थ संकल्पों की बातें होती हैं। ये सब छोटे छोटे कीड़े हैं जो हमारे छोटे से पौधे को शुरू में खाना शुरू करते हैं। तो उसमें क्या होता है, बागवान फिर खाद डालता है, कीटनाशक डालता है। तो यहाँ पे हमारा कीटनाशक क्या है, जब व्यर्थ संकल्प बहुत ज्यादा आते हैं तो बाबा हमें कहते हैं कि अपने मन को बिजी कर दो ताकि व्यर्थ संकल्पों को आने का मौका नहीं मिले। बिजी हम किसी भी चीज में, या तो हम सेवा में बिजी करें या ज्ञान के मनन में बिजी करें। दूसरा हम कर सकते हैं कि परमात्मा की मदद का हमें इतना अनुभव हो कि संशय के वो कीड़े हमें खा नहीं सके। इसमें कई बातें आ सकती है कि किस तरह से कौन से कीटनाशक हम डालें कि ये जो व्यर्थ संकल्प और संशय के कीड़े हैं वो कीड़े हमारे छोटे से पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचाए, खा नहीं सके। उसके बाद होता है फूल आने लगते हैं। जब पौधा ठीक है वो कीड़ों से बच गया, पौधा थोड़ा बड़ा होता है, उस पर छोटे छोटे फूल आने लगते हैं। जब फूल आने लगते हैं तो फूलों में भी क्या होता है, एक तो बागवान रहता है उन फूलों की देखभाल करने के लिए, पर प्रकृति ने फूलों को भी कुछ ऐसी चीजें दी हैं कि फूल खुद अपनी देखभाल कर सके। जैसे बोटनी में हम लोग को पढ़ाया जाता था कि जब फूल उगता है तो फूल को प्रकृति ने एक अलग तरह की, कई फूलों में एक अलग तरह की स्मेल होती है ताकि उसको कोई पक्षी खाए नहीं। कुछ में से कुछ ऑयल निकलता है, कुछ ऐसा तेल निकलता है कि कीड़े उसके पास जाते नहीं है, कुछ की स्किन ऐसी हार्ड होती है कि कीड़े उसको खाते नहीं है। माना अलग अलग चीजों से वो फूल अपनी रक्षा करता है, वो खुद अपनी रक्षा करता है। ऐसे ही हमारे इस ब्राह्मण परिवार में जब हम फूल बनने लगते हैं, परमात्मा बागवान के रूप में हमारा ध्यान रखता है, लेकिन हमें अपने आप भी कुछ ऐसे मैकेनिज्म हमारे अंदर, मानव मैकेनिज्म माना ज्ञान की वही बातें जो हमें उन कीड़ों से बचने में, और यहाँ पर सिर्फ कीड़े नहीं होते, यहाँ पर पक्षी भी होते हैं, क्योंकि फूल जब आता है तो पक्षी भी आकर उसको खाने लगते हैं। तो रूहानी फूलों की रक्षा के लिए, उसको रूहानी फूलों को रक्षा किससे करनी होती है, माया रूपी पक्षियों से। तो कौन कौन से पक्षी रूहानी फूलों को लगते हैं, एक बार फूल बन जाता है, माना हम लोग ब्राह्मण बन गए, हमने ज्ञान को भी समझ लिया, सब बातों को भी समझ लिया और फूल बनने लगे हैं हम, तो कौन कौन सी बातें आती है। एक तो कीड़ा लगता है सबसे पहले, देह अभिमान का कीड़ा, और दूसरा ज्ञान मार्ग में थक जाते हैं, कब से चल रहे हैं तो कई बार थकावट लगने लगती है, ब्राह्मण परिवार में संशय आने लगता है, और संग दोष, मान शान की इच्छा, बाहरी दुनिया का आकर्षण। ये कई बार लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ बैठे पता नहीं बाहर दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हम लोगों को यहाँ पे पता नहीं लगता है, तो बाहरी दुनिया का आकर्षण होने लगता है, मन का खालीपन आने लगता है। हाँ जी, भोजन का आकर्षण, किसी भी बाहरी दुनिया की, हाँ, साइंस के साधनों का, मतलब हमें लगता है कि बाहर में बहुत कुछ है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे उतना, हम लोग डिटैच हो गए बहुत ज्यादा ही उन चीजों का आकर्षण, मन हमारा खालीपन में आ जाता है। खालीपन माना हम लोग को लग, क्योंकि जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं हम फिजिकली बहुत सारी चीजों से फ्री हो जाते हैं, माना जो दुनिया में लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे हम फ्री हो जाते हैं, हमारा काम फिजिकल से ज्यादा बुद्धि का हो जाता है, मेंटली हमें बहुत करना होता है। तो फिजिकली खाली होने के बाद कई बार लोगों को लगने लगता है कि शायद हमारे पास कुछ काम नहीं रहा, तो ये अलग अलग तरह के कीड़े या अलग अलग तरह के पक्षी का वो उस फूल को खाने लगते हैं जो फूल बन गया। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास प्रोटेक्शन के कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, जैसे हमने कहा कीटनाशक क्या क्या है, कुछ फूल इतने पावरफुल होते हैं वो कीड़ों को भी खा जाते हैं, नहीं होते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कीड़े को अपने अंदर ले लेते हैं, खा नहीं लेते हैं लेकिन अंदर ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसमें कैप्चर करने का मैकेनिज्म होता है। तो इसमें सबसे पहला जो हमने कहा देह अभिमान का कीड़ा, तो देह अभिमान के कीड़े को निकालने के लिए हमारे पास कौन सा ऐसा स्वमान है कि हाँ मैं हूँ ही बाप का बाप, मेरा एक शिव बाबा ही है, बाबा हमारा अंगरक्षक, बहुत सारी बातें। देह अभिमान का कीड़ा सबसे मेजोरिटी लोगों में आ जाता है, क्योंकि जैसे ही फूल बनने लगते हैं तो पहले से ही होता है, वो खाने लगता है अभी हमको और ज्यादा तेजी से। और दूसरा जो हमने कहा कि ज्ञान मार्ग में थक जाना, तो इसके लिए क्या हम अपने अंदर स्वमान रखें जो फिर हमें ऐसे थकावट महसूस नहीं हो ज्ञान मार्ग में, मैं शिव शक्ति हूँ पर ये मन से थक जाते हैं हम लोग, शरीर से तो अलग बात है, मन से थक जाते हैं, बुद्धि को भी, हाँ, भारीपन नहीं होना चाहिए, ज्ञान को भी हमको रोचक तरीके से समझना चाहिए अलग अलग ढंग से, क्या मिलने वाला है, अपने भविष्य का नशा होना चाहिए। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमको मिलने क्या वाला है, इतने त्याग के बाद सिर्फ त्याग नजर आता है, भाग्य नजर नहीं आता, खुदा हमारा दोस्त है, स्मृति को हम लोग भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम अकेले हैं यहाँ पे, लेकिन जिस बात को हम पकड़ कर आए थे कि भगवान हमारा दोस्त है, वो बात फिर हमारे दिमाग से ही निकल जाती है, स्मृति विस्मृति में हम लोग आ जाते हैं, और ब्राह्मण परिवार में संशय आने लगता है, वही जो अभी बात हो रही थी परचिंतन परदर्शन वाली, जितना हम परचिंतन परदर्शन में आएंगे तभी हम लोगों को संशय आने लगता है कि ये लोग भी ऐसे कर रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें इसमें। तो ये एक कीड़ा, कौन अभी संपूर्ण बन गए, ये एक आती है बात हमारे मन में जिसके कारण, हाँ वही यही बात है, यही सारी बातें जो है हमें ब्राह्मण परिवार में संशय ला देते हैं कि ये भी तो कर रहे हैं ना, ये भी तो, ये तो 20 साल से 30 साल से, हमको तो अभी 4-5 साल ही हुए, हम कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, हाँ कर रहे हैं, हो जाएगा, अभी तो शुरू किया है हमने। बाहरी दुनिया का आकर्षण, उससे बचने के लिए तो बाबा कई बार कहता है ये दुनिया बारूद के ढेर पे खड़ी है, कभी भी एक चिंगारी लगी और ये खत्म हो जाएगी, तो ऐसी ऐसी कुछ बातें अगर हम अपने मन में लाएं तो ये एक तरह से कीटनाशक का काम करेंगी, जो वो माया रूपी पक्षियों को भगाने के लिए। करण करावन हार बाप की स्मृति हम अपने मन में रखें कि वो करण करावन हार है और वो सदा मेरे साथ है। चौकीदार रखना होगा अपने लिए, अपने आप ही चौकीदार बनना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं जो परमात्मा ने हमें ज्ञान के रूप में दी हैं और ये हमारे प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है, जिससे बाबा तो सदा साथ है ही, वो तो हमें प्रोटेक्ट करेगा इस सब बातों से, पर ये ज्ञान हमारे प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है। तो इस तरह से अगर हमारे माने फूल बनने के बाद हम ये पूरा जीवन ही, एक बार हम फूल तो बन गए पर पूरा जीवन ये प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म हमें यूज करते रहना पड़ता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि फूल में अगर छोटा सा भी छेद हो जाए, किसी कीड़े ने छोटा सा खा लिया या कहीं से दाग लग गया, तो ऐसे फूल को गुलदस्ते में कभी भी नहीं लगाया जा सकता। तो हमें तो वो रूहानी गुलदस्ते का एक हिस्सा बनना है, तो हमें सदा ही अपने ऊपर ये ध्यान देना होगा कि कोई भी कीड़ा कोई भी पक्षी आकर हमारे हमें खराब नहीं करे, हमारे ऊपर दाग नहीं लगाए। क्योंकि जैसे अभी हमने देखा था कि किसान बहुत मेहनत करता है अपनी फसल के लिए, ऐसे ही एक बागवान भी बहुत मेहनत करता है अपने फूलों के लिए। तो बाबा ने भी बागवान के रूप में हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है, तो उसकी मेहनत का हम यही फल दे कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे कि माया का कोई भी कीड़ा या कोई भी पक्षी आकर हमें दाग नहीं लगाए। तो ये आध्यात्मिक बागवानी को जितना हमने समझा। ओम शांति।